चारित्र मोक्ष अपना लेक्चर नंबर 4।
उसको कहते हैं गुण श्रेणी।
यानी पहले नीचे के निषेक में जितना दिया जाएगा द्रव्य, उससे असंख्यात गुना दूसरे में, उससे असंख्यात गुना तीसरे में, उससे असंख्यात गुना चौथे में, ऐसे कुछ निषेकों में या गुणित प्रमाण में दिया जाता है, उसको कहेंगे गुणश्रेणी। ये गुणश्रेणी में से पहले वो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसका जब नंबर आता है नीचे उदयावली की तरफ जाते जाते, जब उन निषेकों का उदय शुरू हो जाता है तो नेचुरली ओरिजिनल निषेक प्लस एक्स्ट्रा उसमें दिया हुआ द्रव्य, इसलिए उसमें निर्जरा बनती चली जाती है, तो उसी को गुणश्रेणी निर्जरा भी कहते हैं। गुणश्रेणी रूप से जो द्रव्य दिया जा रहा है वो जब उदय में आएगा तो निर्जरा कैसी होगी और इतनी अधिक 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 होगी, ये उसका अर्थ है। अब ये उसमें भी गुणश्रेणी के जो अलग अलग टाइप है उसका जब हम श्रेणी में उसका विचार फिर आएगा तब उसके और अधिक चर्चा करेंगे, क्योंकि यही शब्द बारंबार आने वाले हैं। अभी तो हम बिल्कुल प्राथमिकता से उसकी चर्चा कर रहे हैं। सम्यक दर्शन के पूर्व कर्म परिणाम विकल्पात्मक जो कहते हैं, तो हम उसको विकल्पात्मक कहते हैं, परंतु वो तो आत्मसन्मुखता वहाँ हो गई है, क्योंकि शोषण ज्ञानी है ये पहले भी बात की। सम्यक दर्शन के प्रकरण में उसका बहुत बहस चली थी, उसके आत्मसन्मुख परिणाम है, वो अभी विकल्पात्मक है, वो तो कितना जिसका बुद्धिपूर्वक में भी चला जाएगा। ध्यान में आती है, क्योंकि श्रेणी में भी बात आती है, वहाँ तो ऐसा भी कहते हैं कि द्रव्य से द्रव्यांतर और कोई जो शुद्ध का शब्द है उससे अन्य पर उसका विचार चलता है, परंतु वो ऐसा कुछ बुद्धिपूर्वक ऐसा उसमें कुछ नहीं होगा, वो अबुद्धिपूर्वक में चला जाएगा, क्योंकि क्षोक्षम ज्ञानी किसी भी आपने इसको देखा तो उसी समय में क्या है आपके ज्ञान में आता है, किसी चीज़ को अंतर्मुख तक उसी उसी को जानते हैं तब क्षोक्षम ज्ञानी उसको पकड़ सकता है। आत्मा का उपयोग करने पर भी अंतर्मुख में वहाँ तक वही उसी को जानते रहेगा तो जाके उसका फल मिलेगा। वो तो हम द्रव्य नियोग में स्थूल बातें करते, यहाँ तो कर्म परिणाम है इतना बड़ा। स्थिरता तो है ना, स्थिरता वैसी है, स्थिरता होते होते कुछ समय तक तो स्थिर होना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, तब जाके उसका फल हमारे ख्याल में आ जाएगा। वहाँ तो उसका लक्ष्य हो गया, क्योंकि कर्म परिणाम रिवर्सिबल तो नहीं है, उसका अर्थ क्या है, अभी उसने उसका लक्ष्य किया है तो उसका वो प्रथम क्षण समय तो होकर नहीं छूटेगा, कर्म परिणाम में फिर वापस दोबारा उसमें से बोलता नहीं है जी, वो आगे ही बढ़ता है, उसका अर्थ क्या है, उसकी विशुद्धि अनंत गुना बढ़ ही रही है। ये अभी हम जो हमेशा की हमारे द्रव्यानुयोग की भाषा है उसको यहाँ मत लाना, नहीं तो कन्फ्यूजन बढ़ेगा, क्योंकि विकल्प किसके विकल्प करेगा, वो तो आत्मसन्मुख परिणाम है उसके। विकल्पात्मक जो कुछ शास्त्र के विकल्प हो गए समझो, परंतु वो कैसे हो गए, वो अबुद्धिपूर्वक में चले जाएंगे, यानी उसके ख्याल में भी बुद्धि हो, क्योंकि शुद्ध का तो भले उसने अवलंबन लिया होगा आत्मसन्मुखता के पूर्वक, परंतु है तो उसके आत्मसन्मुख परिणाम। ये जैसे ना चले कि टीका में बहुत बार आते हैं कि कर्णानुयोग की भाषा में उसको तीन कर्ण परिणाम कहते हैं, द्रव्यानुयोग की भाषा में उसको निर्विकल्प शुद्धोपयोग कहते हैं, इस तरह से उनकी बात आती है। और यहाँ एक प्रश्न है, अपूर्व कर्ण में नीचे के समय वालों के परिणाम के ऊपर के समय वालों के परिणाम अधिक संख्या अधिक विशुद्धता युक्त होते हैं, यहाँ संख्या से क्या समझना, अपूर्व कर्म मानने वाले कितने जीव होते हैं जो केवल ज्ञानी ने जाने हैं, अनंत, यहाँ अधिक कर्म की बात है नीचे और ऊपर की संख्या की बात है, तो अनंत जीव जो भूतकाल में जिन्होंने कभी शुरुआत की है, जो वर्तमान में कर रहे हैं, जो भविष्य में करने वाले हैं, उन अनंतों की बात केवल ज्ञानी एक समय में जान रहे हैं, तो उन्होंने जाने कि इनके एक समय में इतने परिणाम हैं, जीव कितने हैं अनंत, और एक समय में अलग अलग जुदे जुदे परिणाम कितने हो सकते हैं असंख्यात लोग प्रमाण। जैसे आपके SSC परीक्षा में 10-20 लाख बच्चे बैठे हैं, तो उनके जो परिणाम हैं वो कितने वेरिएशंस हो सकते हैं, मार्कों के वेरिएशन कितने हो सकते हैं, बोलो कोई भी बोलो, 100 मार्क में से उनको मार्क करना है तो कितने वेरिएशंस हो सकते हैं, 100 में 101 हो गई, 0 भी हो गई ना कोई, एंड 0 को भी कम करो और 1, 2, 3 को भी कम करो, इतने वेरिएशन हो सकते हैं, 10-20 लाख बच्चे हैं परंतु वेरिएशन 101 हो गए उसके। ऐसे यहाँ जीव अनंत है, उसमें वेरिएशंस कितने होते हैं, असंख्यात लोक प्रमाण। वो असंख्यात लोक प्रमाण जो वेरिएशंस है उसके कुछ ग्रुप बनाए जाते हैं। अब उसमें बहुत विस्तार है इस प्रश्न का, जो किसका प्रश्न है, वो पंचलब्धि पुस्तक में इसकी बहुत संदृष्टि सहित बहुत विस्तार से चर्चा की, और यहाँ पर भी हमने पहले भी इसकी चर्चा की थी लास्ट टाइम एक बार। अभी हम विषय को गौण करके आगे बढ़ेंगे। ये संख्या क्या होगी, विशुद्धि क्या होगी, उसकी बहुत विस्तार से वहाँ चर्चा की पंचलब्धि पुस्तक में। अभी हम आगे बढ़ते हैं। हम अनंतानुबंधी के बारे में देख रहे थे, उसमें अलगकरण हुआ, अपूर्वकरण हुआ, अनिवृत्तिकरण में क्या होता है, उसकी स्थिति जो कांडगार वगैरह सब प्रोसेस चल रहे हैं, अब उसकी स्थिति कट डाउन होती है। पहले कितनी थी, अंत कोड़ा कोड़ी सागर थे, अपूर्वकरण में घटते घटते अनिवृत्तिकरण के स्टार्टिंग में पृथक्व लक्ष्य सागर, पृथक्व यानी कुछ कुछ नाग सागर रहेगी, फिर और घटते घटते हजार सागर हुई, सौ सागर हुई, पचास सागर हुई, पच्चीस सागर हुई, एक सागर हुई, एक पल्य प्रमाण हुई। ये उसका एक माइलस्टोन था, उसका एक पर्व है। तो वहाँ तक जो एट ए टाइम कटौती का या कांतक का प्रमाण कितना है, पल्ले का संख्या है। अब यहाँ बोर्ड पर यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में हर बार एक एक अंतर्मूल में एक एक जो कांडक घात हुआ वो कांडक का प्रमाण कितना है, कितनी कटौती हुई, तो पल्ले का संख्या करो। पल्ले के बाद ये दुरापदृष्टि क्या होता है उसको देखेंगे, यानी यहाँ तक उसकी स्थिति कटम होगी, वहाँ कितना भी वो कांडक जो बड़े बड़े होंगे। पल्ले का संख्या बहुभाग, ये संख्या बहुभाग किसको कहेंगे, जैसे हम मान लेते पल्ले के हमने दस भाग किए, तो पल्ले का दसवां भाग इसको क्या कहेंगे, पल्ले का संख्या का भाग, और रिमेनिंग भाग जो है नौ भाग को क्या कहेंगे, बहुभाग, संख्या बहुभाग कहेंगे। संख्या टुकड़े करके उसमें एक निकालो और बाकी जो है वो बहुभाग है, यानी यहाँ कांडक का प्रमाण बढ़ेगा क्योंकि यहाँ स्थिति तत्व घटने वाला है, ख्याल में आई बात। तो पल्ले के बाद ये दुरापर पृष्टि जो है वो जो यहाँ तक जो पल्ले के संख्या का भाग वाला जो कोई अंतिम विकल्प है वहाँ तक कितना कटौती हो जाए, उसके बाद और कटौती होते होते एक आवली प्रमाण निषेक बाकी रहेगी, बाकी सब कट डाउन हो, वहाँ कितना होता है, पल्ले का असंख्यात बहुभाग, असंख्या का भाग छोड़कर जो बहुभाग है उतना कांडक होगा, कांडक का प्रमाण बहुत बड़े बड़े होंगे क्योंकि अभी ये जितने विशुद्धि बढ़ रही है उतने उतने कांडक बड़े बड़े हो रहे हैं, और उसके लास्ट में एक आवली प्रमाण निषेक बाकी रहते हैं। अनंतानुबंधी के कट होते होते कितना रह गया, एक आवली। ये कट हुए नहीं, क्या हुआ उसका, सब कहाँ चले गए, हाँ हाँ गुण नीचे कहाँ, इसका उदय किस रूप से तो नहीं आना है, तो उसका उदय किस रूप से आ रहा है, वो तो जिसको मैंने रूप संक्रमण कहा था, जो उच्चिष्ट, देखो उच्चिष्ट और ये उच्चिष्ट किसको कहते हैं, वो झूठन जो है उसको उच्चिष्ट कहते हैं। अभी ये क्या है, उदयावली के ऊपर के जो है वो सारे गुण संक्रमण होकर होकर नष्ट हो, यहाँ बनने वाले अन्य प्रकृति रूप हो गए। अभी यहाँ क्या बन रहा है, सातवें गुणस्थान में एक संजीवलम बन रहा है, पुरुष वेद बन रहा है, हाथी बन रहा है, बहिरूप सा बन रहा है, तो उसमें वो संक्रमित हो गए। अब एक आवली प्रमाण जो निषेक बच गए, जो उदयावली में एंटर हो गए उसका संक्रमण तो होता नहीं, इसका उदय भी नहीं है, तो जो नीचे का निषेक है जिसको हम क्यूब संक्रमण है वो संज्वलन रूप से होकर उदय में आएगा, नष्ट हो गया, दूसरा संज्वलन रूप होकर नष्ट हो जाएगा। इस तरह से आवली काल में वो सारा का सारा संज्वलन रूप से उदय में आ जाते हैं, नष्ट हो जाएगा। अब यहाँ अनंतानुबंधी का कुछ नहीं रहेगा, अब इसको कहेंगे अनंतानुबंधी का भी संयोजन हुआ, पूर्ण हुआ। अनिवृत्तिकरण जो परिणाम थे अनंतानुबंधी के विसंयोजन के लिए जो तीन करण परिणाम मान रहे थे उसमें अनिवृत्तिकरण के लास्ट में ये सब कार्य पूरा हो गया। नहीं, गुण संक्रमण तो चालू ही था, गुण संक्रमण अपूर्वकरण से शुरू हुआ था, केवल स्थिति कांडक ही नहीं था, वो कांडक रूप से गुण संक्रमण भी होगा, नीचे भी आते हैं और उसी समय संक्रमण भी होता है, एट ए टाइम सभी बातें हो रही हैं। ऊपर रह गए उसका नहीं, नीचे आते हैं। देखो कांडक रोग से भी संक्रमण होता है, संक्रमण भी कांडक रोग से होते हैं, उसमें से कुछ परमाणु आकर्षण होकर नीचे आए, कुछ तो अन्य रूप से हो जाएगी। यहाँ जो बनने वाली अन्य प्रकृति है उस रूप से हो गए। हाँ वही संक्रमण होता है जो उदयावली है, उदयावली के ऊपर के, पर ऊपर जो कांडक रूप से ऊपर के हमने कांडक लिए थे वो तो नीचे आकर भी नष्ट होते हैं, वही संक्रमण भी होते हैं। नहीं उसके जो कॉन्टेम्प्ररी जो उसके समान स्थिति वाले उसमें संक्रमित हो जाएगी, या बनने वाले के साथ ऊपर भी चली जाए, वहाँ संतुलन का बंधन है तो वहाँ संक्रमित भी हो गए उसके साथ ऊपर भी चली जाए, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ अभी आगे बढ़ते हैं, यहाँ तो ये जो नष्ट हो जाते हैं ना 101 पेज पर पहली लाइन, इनके परमाणुओं को 12 कषाय और 9 कषाय रूप परिणाम कर अभाव करने का नाम भी संयोजन है। यहाँ 9 कषाय लिखे हैं परंतु जो बनते हैं उसी में, ये तो कॉमन स्कूल कथन है, जो बनते हैं उसी में संक्रमित होते हैं, 9 के 9 कषाय यहाँ नहीं बन रहे, पुरुष वेद ही बन रहा है और यहाँ विशुद्धि इतनी है कि हाथ से रथी बन रहा है और भय दूरसा तो बनते ही बनते हैं। और सातवें गुणस्थान में तो संयुलन बन रहा है, वहाँ विषय योजना की बात शपथ की बात चल रही थी, दर्शन होने के शपथ की, वहाँ चौथे वाला वो प्रत्यक्षण संयुलन बांधता है उसमें संक्रमित होगा, पांचवें वाला अगर विषय योजना करता है तो वहाँ बनने वाले में संक्रमित होगा। देखो ये विषय योजना की बात में एक बात में और बताना चाहती हूँ, इसका नाम है विषय योजना। ये विसंयोजना कौन सा जीव करता है, तो ये लोग सपना के पहले भी करता है और ये विद्योक्षण के पूर्व में भी करता है, और ऐसा भी होता है कि जो वेद समय दृष्टि किसी गति का भी क्यों ना, अभी नारकी तो कुछ सपना नहीं करने वाले हैं, तो ये विसंयोजना का कार्य कोई भी चौथे गुणस्थान वाला जीव भी कर सकता है, सातवें नरक का नारकी भी कर सकता, केवल विसंयोजना कर दी सत्ता में से अनंतानुगति नष्ट हो गया, बस विसंयोजना के साथ वो रहा है सर। परंतु ये कैसा है कि यदि वो जीव मिथ्या तो में चला जाता है तो अनंतानुगति का फिर बंध भी होता है, और जो संक्रमित हो उल्टा होकर अभी अनंतानुगति से उल्टा संक्रमण भी हो जाता है, इसलिए ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। कितने भी जीव अनंतानुगति का विसंयोजन करने के बाद, ये सातवें गुणस्थान की बात नहीं हो रही है, जनरल बात हो रही है, किसी ने विसंयोजना किया और बाद में वो फिर मिथ्यात्व अवस्था में आ सकता है, ये सामान्य विसंयोजना की बात है। हमारा यहाँ विषय वो तो उपशम श्रेणी के सम्मुख वाले की बात है, वो विसंयोजना करने के बाद एक अंतर मूल में द्वितीय उपशम समय पर प्राप्त
करेगा।
जब जीव मिथ्यात्व में जाता है, कोई समय दृष्टि मिथ्यात्व में जाता है तो मिथ्यात्व का भी बंद करेगा, अनंतानुबंधि का भी बंद करेगा, और यदि उसने विसंयोजना की हुई है तो वो जो संक्रमण तो सबका आपस में होता रहता है, अनंतानुबंधि का नया बंध है तो उसके साथ वो संयोजन है, प्रत्याख्यान है, प्रत्याख्यान है, वो भी कुछ परमाणु सार के कारण ही कुछ परमाणु अनंतानुबंधि रूप से संक्रमित भी हो गए, वहाँ नया बंध तो देखेंगे। यानी ये सम्यक दृष्टि जीव फिर मिथ्यात्व में जाने पर उसका मिथ्या दृष्टि जैसा सब कुछ हो जाता है, ये कहने का मिथ्या जितने भी संयोजन है वही की परमाणु फिर दोबारा आने जाएगी भी जरूरी नहीं है, उसके कुछ परमाणु में आते रहेंगे।
ये द्वितीय उपशम करने पर वापिस क्यों करता है,
आपका प्रश्न ये है, श्रेणी के सम्मुख द्वितीय उपशम समय तो फिर पहले उसने विसर्जना की, अब उसने द्वितीय उपशम प्राप्त किया, फिर श्रेणी चढ़ी, फिर श्रेणी उतरा, छठे तक तो क्रम से उतरा, तो आपका प्रश्न उसका द्वितीय उपशम का काल नष्ट हुआ तो फिर वो वेदक समय दृष्टि हुआ, तो वेदक समय दृष्टि जीव क्या संयोजना करेगा, तो ऐसा करेगा, अनंतानुबंधि का बंधन होना चाहिए। वो मिथ्या समय जाएगा तो संयोजन आरोप, नहीं तो विषय मिलना वाला पड़ा रहेगा ऐसा है। बिना अनंतानुबंधि के वेदोत्ता में दृष्टि है, अनंतानुबंधि के तत्व के बिना वेदोत्ता में दृष्टि है, बस इतना है। हाँ, पहले ही समय से संयोजना हो जाता है, क्योंकि वहाँ पहले ही समय से उसका नया बंधन भी चालू होता है।
ये जो अभी आप समझ रहे हैं, तो ये प्रस्ताव प्रवत में करेगा अनुसंधि की दिशा में।
हाँ सर, अभी उसको साकी से नाम कब देंगे, जब श्रेणी के लिए अदर प्रवृत्त करेगा तब, अभी तो उसको द्वितीय उपशम करना बाकी है, तब तक उसको साकी से नाम नहीं है। हाँ, करण परिणाम है, सभी कर्मों में विशेष गुण श्रेणी विशेष जो कुछ बातें हो रही है, स्थिति बंधे मोहना वगैरह सब कर्मों में हो रहा है, उतना तो उसके चल रहा है। अभी हम यहाँ देख रहे हैं अपना जो विषय चल रहा है ना, चारित्र मोह उपशम था, पेज नंबर 152 से हम पीछे गए। देखो उपशम श्रेणी चढ़ने वाले कौन है, क्षायित समय दृष्टि होगी या द्वितीय उपशम वाले, तो कौन से जीव ज्यादा होगी, द्वितीय उपशम वाले ज्यादा होगे, उपशम श्रेणी चढ़ने वाले कि क्षायित वाले ज्यादा होगे? मेरा प्रश्न है, द्वितीय उपशम करके चढ़ने वाले ज्यादा होंगे के दर्शन का क्षय करके चढ़ने वाले ज्यादा होंगे? दो ही ऑप्शन है, कोई कुछ बोलो कुछ शायद वाले ज्यादा ऐसा ही तो आता है, यानी तो यानी कौन से कितने जीव होते हैं, क्या है, कौन से वेद के साथ चढ़ने वाले कितने, सारे अल्प गुण को लिखा हुआ है, एक प्रश्न निकला इसलिए मैंने बता दिया। देखो अब पेज नंबर 152, उपशम फिर वहां पहले से पढ़ती हूँ। उपशम चारित्र के सन्मुख हुआ ऐसा वेदक समय दृष्टि जीव पहले पूर्वोक्त विधान से, वो पूर्वोक्त विधान के लिए हम 98 पेज निकाला, अनंतानुबंधि का विसंयोजन करके, अभी इसका अर्थ समझने हैं, अनंतानुबंधि का विसंयोजन करके अंतर्मूर्त काल तक अध प्रवृत्त अप्रमत्त। देखो ये अध प्रवृत्त अप्रमत्त जो शब्द आता है वो स्वस्थान अप्रमत्त के लिए, वो अधकरण अधकरण की बात यहाँ नहीं है, अध प्रवृत्त देश संयत के लिए भी आता है कभी कभी शब्द, यानी रेगुलर प्रमत्त अप्रमत्त की बात है, इसको स्वस्थान अप्रमत्त है। तो अध प्रवृत्त अप्रमत्त अर्थात स्वस्थान अप्रमत्त होता है, यानी वो जो कोई विशुद्धि के वगैरह वो कार्य तो हो चुका उसका, अभी वो रेगुलर अप्रमत्त है, अब क्या छठे सातवें गुणस्थान में उसका आगमन हुआ, वहाँ प्रमत्त अप्रमत्त में हजारों बार गमनागमन करके पश्चात अप्रमत्त में विश्राम करता है। विश्राम करता है का अर्थ क्या है, वहाँ अन्य कुछ दूसरा कार्य नहीं हुआ तो रेगुलर उसका छठा सातवां अनुष्ठान चलता है। उसके पश्चात कोई जीव तीन दर्शन मुनियों को क्षिपा कर क्षय करके, क्योंकि जो क्षायिक समय दृष्टि होता है वहाँ पर भी पहले अनंतानुबंधि की विसंयोजना करता है तीन कर्म परिणाम में, फिर अंतर्मुख में रुक कर फिर दर्शन मुनि को जो तीन है उसको क्षय करने के लिए भी तीन कर्म परिणाम होते हैं, फिर उसमें मिथ्यात्व का क्षय करता है, समय मिथ्यात्व करता है, फिर समय प्रकृति नष्ट होता है। वो प्रोसेस अभी हम नहीं देखने वाले, वो पूर्व शिविरों में विस्तार से देख चुके हैं। क्षायिक समय दृष्टि होकर चारित्र मोह के उपशमन का प्रारंभ करता है, उसके तो क्षायिक समय तो होने का विधान पहले कहा है, वो प्रोसेस हमने जाना है, वह जानना। कोई जीव द्वितीय उपशम समय को सहित उपशम श्रेणी चढ़ता है, उसके दर्शन मोह के उपशमन का विधान कहते, चारित्र मोह के उपशम का विधान देखने के पहले यहाँ दर्शन मोह के उपशमन का विधान है। ये कौन सा जीव है, ऑलरेडी समय दृष्टि है, सातवें गुण स्थान वृत्ति है, श्रेणी के सम्मुख है, उसका तो वेदक समय दृष्टि है, अभी उसने अनंतानुबंधि की विसंयोजना की है, अभी उसके सम्यक प्रकृति का उदय हो रहा है, मिथ्या तो समय मिथ्या तो सत्ता में है, दूसरे समय से ऊपर पड़े हैं, अब वो तीनों ही प्रकृति जो है दर्शन मोह की एक साथ उसमें गैप तैयार करके उसमें उसको उपशम करेगा। और उतने काल में फिर चारित्रम होने के लिए उपशमने का कार्य होगा। ये द्वितीय उपशम की बात अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ से फिर तीन कर्म परिणाम मान लिया। सातवें नहीं था वो आता है या छठा सातवा चल ही रहा है उसका। देखो केवल विषय योजना करने वाला जीव तो रेगुलर है, उसके तो छठे सातवा उसकी सब ऐसा विषय योजना के बाद इमीडिएट वो द्वितीय उपशम करेगा तो बात अलग है। हमने तो देखा था चौथे पांचवे वाला भी विषय योजना करने वाला जीव है, जिसने विषय योजना करके बैठा है वो बहुत सारा है, ऐसा भी जीव हो सकता है। तो उनके तो सब क्रियाएं चलेगी, उसके आहार विहार ये सब चलेगा। यह हम अंतर्मुहूर्त में करने वाला जीव है, उसके बाद हम उसको गौण करके यहाँ बात करेंगे। अब यहाँ द्वितीय उपशम में क्या क्या होता है उसको अभी हम देखते हैं। ये द्वितीय उपशम वाला चार्ज जगह देखो अभी पेज नंबर 152 पर 206 की टीका हमको पढ़नी है। स्वस्थान अप्रमत्त में, यानी रेगुलर जो छठा सातवां गुणस्थान है वो सातवें गुणस्थान को स्वस्थान अप्रमत्त कहेंगे। अंतर्मुहूर्त विश्राम करके उसके पश्चात तीन करण विधि द्वारा दर्शन मुनि को युगपत उपशमाता है, तीनों को युगपत उपशमाता है, ये उसका अर्थ है। वहां अपूर्व कर्म के प्रथम समय से लेकर यहाँ तीन कर्म परिणाम मान रहा है, किसके लिए? द्वितीय उपशम करने के लिए, दर्शन होने के उपशम करने के लिए। तो अधर कर्म होगा उसमें क्या क्या बातें होगी जो पहले भी हमने देखी थी? अनंत गुणा विशुद्धि होगी, प्रशस्त कर्मों का अनुभव होने चतुस्थानगत होगा बढ़ते हुए अनंत गुणा, और प्रशस्तों का घटते हुए होगा, और फिर स्थिति बंदे घटता जाएगा। ये बातें वहाँ पर भी होंगी। स्थिति बंद आप कहेंगे वो दर्शन होने का कहाँ बंद हो रहा है, दर्शन होने की बंद नहीं है, वहाँ जो बनते हैं आयु बिना सभी कर्मों में ये बातें होती हैं, उनका बंद भी ज्ञानावरणादी का भी जो नया बंद होता है वो घटकर बनने का होता है। तो यहाँ अधक कर्म में तो बातें होगी। अब द्वितीय उपशम के लिए जो अपूर्व कर्म करता है उसकी बात है। वहाँ अपूर्व कर्म के प्रथम समय से लेकर प्रथम उपशम सम्यक्त्ववत, अभी जो हमने देखा था क्या क्या होता है, गुण संक्रमण बिना अन्य स्थिति अनुभव कांड का घात और गुणश्रेणी निर्जरा आदि सर्वविधान जानना। द्वितीय उपशम सम्यक्त्व में भी यहाँ गुण संक्रमण नहीं है, प्रथम उपशम में भी नहीं था, अनंतानुबंधी के विसर्जना में था क्योंकि अनंतानुबंधी अन्य रूप परिणमित हो गई। यहाँ दर्शन मुनि में क्या क्या हो रहा है वो बात चलेगी। गुण संक्रमण नहीं हो रहा तो चार बातें कौन सी होती है? गुण श्रेणी होती है, गुण संक्रमण नहीं होता वो बताया, स्थिति कांड घात होगा, अनुभाग कांड घात होगा, ये बातें चली सभी सातों कर्मों में होगी। और अनंतानुबंधी का विसंयोजन इसके होता है उसमें भी स्थिति खंडन आदि पूर्वोक्तवत जाना, वो तो पहले हम जान चुके हैं। अब यहाँ आते 153 देश में चारित्र मोह को उपशमना के सन्मुख हुए जीव के दर्शन मोह की उपशमना अथवा क्षमना होती है। वहाँ उपशम विधान में केवल गुण संक्रमण नहीं है, विद्या संक्रमण है अथवा अधर प्रवृत्त संक्रमण है, विशेष आगे कहेंगे। वो विशेष आगे कहेंगे। यहाँ तो ये संक्रमण में कितने परमाणु संक्रमित होते हैं उसके लिए वो संक्रमण के नाम ही अलग अलग है। गुण संक्रमण में कितने नंबर ऑफ परमाणु संक्रमित होते हैं वो भी गुणित प्रमाण में, उसके लिए उसके जो टोटल नंबर ऑफ परमाणु डिवाइडेड है वो संख्या, उसको कहेंगे वो संख्या का नाम ही गुण संक्रमण भाग है। उससे भाग लेने पर जो प्रमाण आता है उतने परमाणु एक समय में संक्रमण है, उसको कहेंगे गुण संक्रमण। विद्या संक्रमण नाम का जो भाग है वो बड़ा है, तो बड़ी संख्या से भाग लेंगे तो छोटा उसकी लब्ध राशि आएगी तो कम परमाणु संक्रमित होते हैं, वहाँ वो विद्या संक्रमण के। अभी वो संक्रमण के भेदों में अभी हमको नहीं जानना है, वो अलग अलग जितने परमाणु संक्रमित होते हैं उसके लिए वो जो जितनी संख्या का भाग लेना है उसके नाम से संक्रमण को ही अलग अलग नाम दिए जाते हैं। विशेष आगे कहेंगे, जब वहाँ उसका नंबर आएगा तब उसकी चर्चा करेंगे। अपूर्वकरण व अनिवृत्तिकरण के प्रथम समय संबंधी स्थिति सत्व से अंत समय में जो स्थिति सत्व है वो कांडघात करने से संख्या गुणा नहीं होता है। क्या कहा, जैसे हमने वहाँ देखा कांडघात होते हैं तो जितना कांडघात हुआ तो सत्व घटा और नया बंध जहाँ जितना हो रहा है वो भी कम हो रहा है तो बंध भी घटा। ये तो वहाँ होते ही रहेगी, ये प्रोसेस तो वहाँ भी चलेगी। अभी अनिवृत्तिकरण में ये जो सामान्य जो स्थिति कांडघात अनुभाग कांडघात वो सब बातें हो रही है। अब ऐसे होते होते अनिवृत्तिकरण का कुछ काल बीत गया तब यहाँ क्या विशेष बातें होती है वो यहाँ समझाए। यहाँ द्वितीयोक्षम करने जा रहा है, जैसे प्रथमोक्षम में हमने दर्शन मुनि में ज्ञात तैयार हुई थी वैसे द्वितीयोक्षम यानी दर्शन मुनि की तीन कर्म है अभी यहाँ मिथ्या तो समय मिथ्या तो समय प्रकृति तीनों में एट ए टाइम ज्ञात होने वाली है वो बात अभी वहाँ बताएंगे। देखो क्या लिखा है, संख्या गुणा ही क्या होगा, कांडघात संख्या गुणा नहीं होगा, वो स्थिति सत्व जितना था उसके संख्या के भाग प्रमाण बढ़े जाएगा उसको कहेंगे संख्या गुणा ही हुआ। जैसे पहले मान लेते जितना था उसके वन फोर्थ रह गया, वन फोर्थ रह गया तो उसको कहेंगे चार गुणा ही हो गया। ये उसके कहने की पद्धति है क्योंकि यहाँ स्थिति सत्व कितना था, अभी अनंत अनुमति की बात नहीं कर रहे, दर्शन मुनि के अन्य कर्मों की बात कर रहे, ज्ञान आवरण दर्शन सब कितने अंतर कोड़ा कोड़े सागर सबकी स्थिति पड़ी है वो कदम हो जाएगी, रहेगी अंतर कोड़ा कोड़े सागर पर वो तो पहले से संख्या गुणाहीन हो जाएगी। अब अनिवृत्तिकरण काल का संख्या बहुभाग बीत जाने पर क्या रहता है, यानी उसका एक भाग बाकी रहा, मान लेते ना पांचवा भाग बाकी रहा, जितना अंतर्मुहूर्त है उसका वन फिफ्थ बाकी रहा, हमें समझा नहीं तब क्या होता है उसकी बात अभी यहाँ समझा नहीं समझे। अदब प्रवृत्तकरण में क्या हुआ तो वो विशुद्ध बढ़ती है वो सब बातें हुई, अपूर्वकरण में क्या हुआ गुण श्रेणी रचना हुई, स्थिति कांडक घात हुए, अनुभाग कांडक घात हुए, ऐसे होते होते अनिवृत्तिकरण में वो बातें चलती रही, जो अपूर्वकरण में हुई वही बातें अनिवृत्तिकरण में भी चलती रही। अब अनिवृत्तिकरण का भी संख्या बहुभाग बीत गया, अभी कुछ काल अवशेष रहा तब विशेष बात क्या होती है वो यहाँ बताए। देखो अपूर्वकरण के प्रथम समय में जो साधिक, देखो अपूर्वकरण में गुणश्रेणी की रचना हुई थी, अपूर्वकरण जब शुरू हुआ था तब गुणश्रेणी की रचना हुई थी, वो गुणश्रेणी की लंबाई कितनी उसका आयाम कितना था तो वो बता रहे। अपूर्वकरण के प्रथम समय में जो साधिक अपूर्वकरण अनिवृत्तिकरण काल मात्र आयाम वाला वाले गणितानुशेष गुणश्रेणी का आरंभ किया, इसका अर्थ है यहाँ अपूर्वकरण से गुणश्रेणी की रचना बनी थी, जितनी गुणश्रेणी बनी थी उसकी लंबाई जो कितने निषेकों में दिया था उसको कहेंगे गुणश्रेणी का आयाम, वो जितना अपूर्वकरण का काल प्लस अनिवृत्तिकरण की जितने समय काल है और फिर और थोड़ा अधिक, ये जितना काल है उतने उतने समय के वहाँ निषेक पकड़ना, काल हम अंतर्मुहूर्त में गिन रहे और यहाँ गुणश्रेणी की लंबाई भी हम अंतर्मुहूर्त प्रमाण ही कहेंगे क्योंकि एक समय में एक निषेक है, मान लेते हैं 25 निषेक हम कहेंगे, 25 समय अगर लगते हो गए अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण के लिए उसमें और थोड़े मिला है तो मान लेते हैं कि 30 समय होंगी हमारी गुणश्रेणी मिल जाए, इस तरह से अपूर्वकरण का भी अंतर हो अनिवृत्तिकरण का छोटा अंतर हो और प्लस थोड़ा इतना वो गुणश्रेणी का आयाम है, इतनी गुणश्रेणी बनी थी तब अपूर्वकरण के स्टार्टिंग में, अब उसमें से नीचे का एक एक निषेक गल रहा है अपूर्व कर्म बीत गया तो जितना अपूर्व कर्म का अंतर्मुख है उतने निषेक भी कर गए। अब कितना अनुवृत्ति कर्म का काल आया, फिर और थोड़ा सा। अब अनुवृत्ति कर्म का भी बहुत काल बीत गया है तो उसमें अनुवृत्ति कर्म का शेष और थोड़ा है, इतना गुणश्रेणी बची हुई है। ध्यान दें, अभी जिस पोजिशन पे आ गया है, गुणश्रेणी गलते 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 अभी क्या बाकी है, गुणश्रेणी का थोड़ा भाग, वो कितना है, अनिवृत्ति का रिमेनिंग काल प्लस और थोड़ा। यहाँ तक बात करनी है, हाँ अभी उसमें क्या होगा उसकी बात अभी पढ़
दें। उदयावली के बाहर तक है,
ये उदयावली अभी बीत चुकी है, जब शुरुआत हुई थी तो उदयावली के बाहर थी, और आवली के बाद वो गुणश्रेणी के भी उदय काल हो गया, उसमें से गल रहा है सारा। बहुत बड़ा है वो तो उदयावली से भी, वो जितना अनिवृत्ति कर्म का काल शेष है वो भी अंतर्मुहूर्त है, आवली से भी बहुत बड़ा है, और उससे भी थोड़ा थोड़ा अधिक नहीं है, इतना अभी बाकी है, इतने निषेक अभी बाकी है। ऊपर तक निषेक है ही है पर गुणश्रेणी रूप से इतने बाकी है। अब उसमें क्या होता है, वह अनिवृत्ति कर्म के बहुभाग तक प्रवर्तता में चलता है, वहाँ अपकर्षण किए द्रव्य को। अब देखो क्या कहते हैं, यहाँ ये अपकर्षण करने का कार्य तो चल रहा है, कांडक का कार्य भी चल रहा है, वो कितना जितना अपकर्षित होता है कितना होता है, तो उसको कहते हैं एक विशिष्ट संख्या से भाग देते हैं, टोटल नंबर ऑफ परमाणु को, और उतनी संख्या अपकर्षित होती है, उस संख्या को कहेंगे अपकर्षण भाग। जहाँ विशुद्धि बढ़ती है वहाँ अपकर्षित होने वाला द्रव्य का प्रमाण भी बढ़ता है। अब जितना द्रव्य अपकर्षित हुआ है, यानी अपनी स्थिति से जिनकी स्थिति घटकर नीचे आएगी उसको कहेंगे अपकर्षण का द्रव्य। अब वो जो द्रव्य अपकर्षित हुआ द्रव्य, वो कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कुछ उदयावली में दिया जाएगा, कुछ गुणश्रेणी में दिया जाएगा, कुछ रिमेनिंग ऊपर की स्थिति में दिया जाएगा। तो उसको वो देने का जो प्रमाण है वो कहाँ कितना दिया जाता है वो भी उसका प्रमाण बताया जाता है। ये कुछ ख्याल में रखने में मेमोराइज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी तो कहाँ कितने दिया जाता है, कोई भंगार छोटा है कोई बड़ा है उस प्रमाण में उसको दिया जाता है, बस इतनी बात है हमको लेनी है। किस रूप से दिया जाता है, उदयावली में, गुणश्रेणी में और ऊपर। इसका भंगार का प्रमाण हिनाधिक होता है तो उसमें जहाँ भंगार छोटे होते हैं तो द्रव्य ज़्यादा दिया जाता है, जहाँ भंगार बड़े होते हैं तो द्रव्य कम दिया जाता है, वो इतना ही इसमें से समझना है। तो जितना आकर्षित होता है उसमें से जो कुछ भाग देते हैं तो अधिक से मैक्सिमम द्रव्य तो ऊपर की ही, ऊपर निषेक तो अंतर थोड़ा थोड़ी सागर प्रमाण है उसमें दिया जाता है, बहुत लंबे स्थितियों में बढ़ता है। अब जो एक भाग है वो उदयावली में और गुणश्रेणी में दिया जाएगा उसकी बात करते हैं, तो बहुभाग उपरीतम स्थिति में दिया जाता है, अवशेष एक भाग को असंख्यात लोक का भाग देकर बहुभाग गुणश्रेणी आयाम में और एक भाग उदयावली में दिया जाता है। देखो आप कहेंगे उदयावली तो फिर रही ना, जो फिर भी गई है तो गुणश्रेणी के निषेक उदयावली में प्रवेश, उसको उदयावली कहेंगे। ध्यान में आते हैं, उदयावली किसको कहेंगे, उदय के समय से आवली काल तक निषेकों को उदयावली कहेंगे, वो एक निषेक फिर गया तो अभी जो आवली प्रमाण है उसको उदयावली कहेंगे, और एक निषेक फिर गया तो जो ऊपर थी उदयावली के ऊपर गुणश्रेणी वो तो उदयावली में भी इंटर हो गई है तो उसके निषेक को फिर दे लेंगे। यहाँ क्या समझ लें कि अनिवृत्तिकरण का बहुभाग बीतने पर पहले जो अपकर्षण किया हुआ द्रव्य का कितना भाग गुणश्रेणी में उदयावली में दिया जाता तो भागार बहुत बड़ा था, कितना था तो असंख्यात लोग कितना भाग था, तो थोड़ा द्रव्य गुणश्रेणी में उदयावली में दिया जाता। अब यहाँ भागार का प्रमाण क्या, पल्ले का असंख्यात होगा जो बहुत छोटी संख्या है, लोग के सामने संख्या बहुत छोटी है तो छोटी संख्या से भाग देंगे तो वो बहुत बड़ा होगा और वो यहाँ गुणश्रेणी में दिया जाता। पहले जितना द्रव्य दिया जाता तो वहाँ जो एक समय प्रबद्ध जितना है उससे भी छोटा द्रव्य दिया जाता, अब यहाँ कितना द्रव्य दिया जाएगा तो कहते हैं असंख्यात समय प्रबद्ध इतना द्रव्य गुणश्रेणी आदि में दिया जाएगा। असंख्यात समय प्रबद्ध का अर्थ समझते हैं, एक समय में जितने परमाणु बनते हैं उसको कहते हैं एक समय प्रबद्ध, और रेगुलर अनेक अलग अलग समय में बंधे हुए जो खिलते हैं वो भी करीबन एक समय प्रबद्ध इतना ही खिलते हैं, यानी जितना बांधते हैं उतना ही खिलता है, पूर्व में बंधा हुआ उसमें उतना ही खिलता है। आपने छड़ाला में भी पढ़ा होगा, अज्ञानी जीव करोड़ों भवों तक तप तपे तो भी कितनी निर्जरा करेगा, एक समय में एक समय प्रबद्ध, एक समय में एक समय प्रबद्ध, करोड़ों भवों के समय गिनेंगे तो भी असंख्यात हो गए। तो इतने असंख्यात समय प्रबद्ध खिरे पर उसने असंख्यात बांधे भी उसने, पर मिथ्या तो पड़ा है। तो असंख्यात भवों में जितनी निर्जरा करेगा वो ज्ञानी, अब ये जो ज्ञानी जो अनुवृत्तिकरण तक पहुँचे वो ज्ञानी की अगर बात करेंगे तो एक समय में असंख्यात समय प्रबद्धों की निर्जरा करेगा। जो अज्ञानी असंख्यात करोड़ भवों में जितना नहीं कर सकता उतना, क्यों? बस आत्मसंगम परिणामों में सहज रूप से आकर्षण होकर इतना द्रव्य बढ़ जाता है कि उसमें असंख्यात समय प्रबद्ध गुणशैली रूप से दिए जाते हैं, वो उदय में आते खिल जाते हैं। क्योंकि हमें तो लगता है कि बाह्य तप से ही केवल निर्जरा होती है, इतने उपवास करोगे इतनी निर्जरा होगी, उससे कुछ नहीं होता है कि बंद हो ही रहा है, क्योंकि मिथ्यात्व वाला बंद पड़ा ही है, कितना गिरेगा वहां पर, एक समय प्रबद्ध खिरेगा। अज्ञान अवस्था में ऐसी वो गुणित प्रमाण में निर्जरा वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता, वहाँ सामान्य से हृदय रूप जो निर्जरा वो चलती रहती है। अब यहाँ कहते हो देखो नीचे से चौथी लाइन 154 पेज पर, यहाँ उदयावली में दिया हुआ उदीर्ण द्रव्य, देखो उदीर्ण द्रव्य में डायरेक्ट उदयावली में जो दिया जा रहा है, गुणश्रेणी की तो बात छोड़ दो, उदयावली में कितना जुट रहा है, असंख्या समय प्रबद्ध प्रमाण होता है, यानी वहाँ का निषेध तो समय प्रबद्ध पना होगा होगा ओरिजिनल निषेध, उसमें जो आकर ऊपर से आकर जो दिया जाता है द्रव्य वो असंख्या समय प्रबद्ध है, उसमें उसकी निर्जरा भी है, उदयावली में आ गया तो अभी खिलना ही है, और ऐसा हर समय में चल रहा है, हर समय में असंख्या समय प्रबद्ध असंख्या समय प्रबद्ध आ रहे हैं उदयावली में और वो सब खिल रहा है, यानी जहाँ ये करण परिणाम होते हैं वहाँ इतनी निर्जरा चलती रहती है, जहाँ जहाँ गुणश्रेणी रूप से सब जगह असंख्या समय प्रबद्ध मत लेना, पर जहाँ ये अनिवृत्तिकरण वगैरह परिणाम होते हैं वहाँ इतनी असंख्या समय प्रबद्धों की वो दिया भी जाता है, उदीर्णा भी होती है, उतना उदीर्ण से उदय होकर जाता भी है। इसके पश्चात अंतर्मूर्त काल व्यतीत होने पर दर्शन मोह का अंतर करता है, वो अंतर करता है नहीं क्या करता है उसकी बात हम देखेंगे। अभी तक तो सारे जो प्रोसेसेस चल रहे थे और वो तो सभी कर्मों में चल रहे थे, जो स्थिति कांड घात हो रहा था, अनुभाग कांड घात हो रहा था, स्थिति बंध घटना होता, तो सभी सातों कर्मों में हो रहे थे। अब दर्शन होने में कुछ विशेष होने वाली बात है तो क्या होगा, तो उसमें कुछ गैप तैयार होगा तीनों ही में, उसकी बात अब कर रहे हैं। देखो तीसरे करण परिणाम का बहुत भाग बीत गया, अभी छोटा भाग बाकी, तब जाके ये अंतर होता है। जैसे हमने प्रथम ऑप्शन संयुक्त के बारे में भी देखा था, वैसी बात यहाँ पर। अब देखो हम 210 की टीका पढ़ेंगे, एक गैप तीनों में गैप तैयार होगी। यहाँ उदय किसका है हमने देखा था, वेदक समय दृष्टि में हो, अभी द्वितीय ऑप्शन हुआ नहीं है उसमें, समय प्रकृति का उदय है। देखो यहाँ जो बोल रहे हैं आपके पास जो चार्ट है उसमें भी आप देख सकते हैं, परंतु मैं क्या बताना चाहती हूँ इसको आपको बोर्ड की तरफ देखना पड़ेगा। यहाँ तीन प्रकृतियाँ सत्ता में हैं, मिथ्यात्व है, समय मिथ्यात्व है, समय प्रकृति है। अब ये ज्ञात की वो बात छोड़ दो, ये कंटिन्यूस ऐसे ऐसे इमेजिन करो, सभी कंटिन्यूस है, और यहाँ उदय समय प्रकृति ये दोनों भी समय प्रकृति रूप होकर उदय में आ रहे हैं, हर समय ये बात चल रही है। अभी ऐसे करते 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 अनिवृत्तिकरण में बहुत भाग बीत गया, अब क्या होगा, यहाँ चलकर इतने निषेकों में अंतर हो जाएगा, अंतर हो जाएगा वो नीचे नष्ट हो जाएगी, नष्ट होगी तो उसके परमाणु कहाँ जाएंगे, दो ही रास्ते, नीचे और ऊपर। उत्कर्ष होने के लिए कंडीशन होती है कि नया बंद होना चाहिए, प्रथमोक्षण सम्यक तो था तब अनिवृत्तिकरण में भी मिथ्यात्व का बंद हो रहा था, तब हमने कहा कि कुछ परमाणु ऊपर गए कुछ नीचे आए, वो तो तब पॉसिबल था। अब यहाँ तो
मिथ्यात्व का बनने का सवाल ही नहीं है। अब यहाँ क्या हो गए, यहाँ के परमाणु नीचे आ गए। अब यहाँ जो गुण श्रेणी में यहाँ तक बनी थी ऊपर तक अनिवृत्ति का कार्य और फिर और थोड़ा सा जो और थोड़ा सा था वो भी ज्ञात में चला गया और वो गुण श्रेणी के ऊपर के भी अनेक निषेकों का घात होने वाला है। यहाँ तो इतनी जो ये लंबा है इतने सभी निषेकों के कुछ परमाणु नीचे आए, दूसरे समय में और नीचे आए असंख्या गुणा, तीसरे समय में और नीचे आए, ऐसे करते करते एक अंतर्मूर्त में ये सभी निषेकों का पूर्ण घात हो जाता है और यहाँ इतनी बड़ी गैस बन जाती है। आपने शायद गौर किया होगा मिथ्या तो के नीचे तो केवल दो ही लाइन बताई है, यानी उसकी गैप बड़ी है। उदय रूप जो है वो अनिवृत्ति कर्म का जो शेष काल है उतने निषेक छोड़कर ऊपर जो सारी बात किया था वो तो अंतर में चला गया, उसका अभाव कर देता है। इसमें आवली प्रमाण निषेक छोड़कर ऊपर के सब का अभाव हो जाता है, अंतर हो जाता है। यहाँ के परमाणु जो है वो समान स्थिति वाले इसमें भी आ जाएंगे, ये उदयावली में कुछ आकर चले भी जाएंगे और एक आवली में वो भी नष्ट होने वाले हैं, क्योंकि वो इस रूप से संक्रमित होकर होकर उदय में आते आते वो नष्ट हो जाएंगे। देखो सबकी द्वितीय स्थिति समान, इसको कहते हैं द्वितीय स्थिति। अंतर के ऊपर जो निषेक है उसका नाम है द्वितीय स्थिति, अंतर के नीचे जो है उसको कहते हैं प्रथम स्थिति। यहाँ पर भी कितना अनिवृत्ति कर्म शेष है उसकी इतनी स्थिति बाकी है, इतने जो समय है उतने अभी अनिवृत्ति कर्म के समय बाकी है। मिथ्यात्व की गैप और सभी मिथ्यात्व की गैप बहुत बड़ी हो गई है। नीचे आवली प्रमाण छोड़कर देखो यहाँ तो वेरिएशन है और ऊपर के सबके निशे एक लेवल में है, द्वितीय स्थिति के सभी एक लेवल पर है। डिफरेंस कहाँ है, पहली स्थिति मिथ्यात्व की प्रथम स्थिति आवली प्रमाण छोड़कर ऊपर के सभी निषेकों का अभाव कर दिया, समय प्रकृति रूप हो गए। समय मिथ्यात्व में भी ऐसा ही हुआ, समय प्रकृति ने भी इतना ज्ञात कर दिया, यानी ये गुणश्रेणी के ऊपर जितने ये गुणश्रेणी के ऊपर ऊपर के कुछ निषेक और ऊपर के बहुत सारी स्थितियाँ इन सबका अभाव कर दिए, अभाव करके इन सब परमाणु नीचे आ गए। अब वहाँ क्या हो गया, गैप तैयार हो गई। अभी क्या हो रहा है, ये जब प्रोसेस चल रहा था तो नीचे से एक एक निषेक उदय रूप भी हो रहा था, समय प्रकृति का उदय वहाँ पर भी चल रहा था। ख्याल में आ रही बात, पहले पहले क्या होता है कि ये ऊपर से भी कुछ परमाणु अंदर को लांतर नीचे आते रहते, आकर्षण होते होते बातें देखेंगे, ऐसे होते 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 जब यहाँ तक समय बीत जाएगा तो ये समय प्रकृति का अंतिम निषेक खिलेगा और जब तक ये खिलने का कार्य चल रहा है बाय दैट टाइम ऊपर की जो तीनों प्रकृतियाँ हैं उसको उपशमित करने का कार्य हो रहा है। उपशमित देने को ऐसे दबे जाते जाते कि उसमें ना उसका आकर्षण होना हो, संक्रमण संक्रमण चलता रहता है मिथ्यात्व से, समय मिथ्यात्व समय प्रकृति रूप होने का कार्य आगे तक भी चलता है, उसमें कोई रुकावट नहीं आती। परंतु बाकी जो कुछ है उदय आना उदय ना होना ये सब बातें रुक जाती, तो ये जब यहाँ ये पहुँचता है और ये गैप यहाँ इतना बड़ा है उसमें समय प्रकृति का कोई निषेक है नहीं है, तो जीव का भी समय तो है वो क्षाई जैसा निर्मल कहना, इसको कहेंगे द्वितीयोक्षण समय की प्राप्ति। और ये अंतर वैसे यहाँ इतना दिखाई पर बहुत बड़ा है कि इस काल के अंदर अंदर अब वो फिर अंतर्मुख रुकेगा, हजारों बार चटा सातवा करेगा इसी काल के भीतर और फिर उष्ण श्रेणी चढ़ेगा, उसके लिए अधकरण अपूर्वकरण अनिवृत्तिकरण सब होगी, फिर ग्यारह गुण स्थान सब जाके फिर लौटेगा। तब तक इसकी गैप इतनी लंबी है, इतना बड़ा है ये गैप कि फिर ऊपर से लौटकर छठे क्या चौथे तक भी आ सकता है, तब तक इसका वो द्वितीय उष्ण का ये काल चलता रहता है, यानी इस काल के भीतर वो चारित्र मुख की उपशमना करेगा। चारित्र मुह में क्या क्या बातें होती वो तो अपना विषय चलेगा विस्तार से, अभी हम यहाँ पढ़ते हैं थोड़ा द्वितीय उपशम में क्या होता है। गैप तैयार हो गई तो ये उदयावली है, अभी हम पढ़ेंगे इसमें से। तो शुरुआत में क्या है, अपकर्षण का प्रोसेस चल रहा था, ऊपर से अपकर्षण करके नीचे आएंगे कुछ परमाणु, अभी अपकर्षण होते होते यहाँ आवली काल बाकी रहा, या दो अवली काल बाकी रहा तब तक तो ऊपर से लांग अंतर को लांग कर नीचे परमाणु आएंगे, बाद में वो भी उठ जाएंगे। दो अवली प्रमाण शेष रहा, ऊपर अवली के परमाणु नीचे के अवली में आएंगे, उसको गिरना कहेंगे, वो भी बंद हो जाएगा। जब एक अवली प्रमाण निषेक रहेंगे, एक एक करके उदय चलेगा, जब वो भी नष्ट हो जाएंगे तब द्वितीय ऑप्शन समय की प्राप्ति होगी। कुछ नहीं
देगा,
कुछ नहीं नीचे, कुछ नहीं, अब अंतर है, और ऊपर जो द्वितीय स्थिति में पड़े वो उपशमित है, उपशमित ने वहाँ लॉक कर दिया उसको, अभी वो नीचे नहीं आ सकता। अब उस दर्शन होने की बात है, सत्ता में है, ग्यारहवें गुणस्थान में तीनों की सत्ता है कि नहीं? नहीं, विसंयोजन में सब सत्ता में से नष्ट हुए, यहाँ सत्ता में से नष्ट नहीं हुए, अंत कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण सत्ता पड़ी है उनकी। विसंयोजना में उनकी स्थिति सब घटाते 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 पूरा नष्ट कर दिया था, वैसा यहाँ नहीं है। जिनकी सत्ता में ये सब पड़े हैं, जो कहते हैं ना ग्यारहवें गुणस्थान जिसने प्राप्त किया था, उपशम शनि चढ़ के जो उतरा था, वो मिथ्यात्म में जा सकता है, वो ग्यारहवें में से डायरेक्ट नहीं जाता है, ग्यारहवें से दसवें नौवें आठवें सातवें छठवें करते करते बाद में वो तारांतर से मिथ्यात्म में भी जा सकता है, तो उसकी सत्ता है ना, तो इसके परिणाम ऐसे बिगड़ सकते हैं कि मिथ्यात्म में चला जा सकता है, वो जाकर अर्धपुद्गल परावर्तन मिथ्यात्म में घूम सकता है, उसकी बात अभी यहाँ नहीं करनी, अभी यहाँ प्रोसेस क्या हो रहा है उसकी बात करनी है। देखो जो संक्रमण हो रहा था, जो संक्रमण हो रहा था तो तीनों पड़े है ना, इसकी भी पूर्ण रूप से उसके नीचे से उसकी भी निषेक रचना थी, खाली कभी नहीं होगा, मिथ्या तो भी हमेशा बना रहेगा, समय मिथ्या तो भी, क्योंकि मिथ्या तो भी तो कितने परमाणु थे, उसी में से समय मिथ्या तो समय प्रकृति होते रहे, वहाँ भी संक्रमण चालू ही था, उदय इस रूप से हो रहा है, उदय में उसको कहेंगे वो थी संक्रमण रूप से उदय हो रहा है, सत्ता में पड़े थे सारे, सत्ता में पड़े गए, अब यहाँ पड़ेंगे थोड़ा, कुछ प्रश्न आपने कहा कि इन दोनों का गैप क्यों बड़ा होता है, क्योंकि वो पूरी नष्ट होने वाली है जल्दी, इसका तो उदय चलेगा हमेशा ऐसा, अभी चारित्रमों की उपशमना भी हमको देखनी है, जो अनुदय रूप होते हैं इसका गैप बड़ा होता है, जो उदय रूप है उसके अंतर्मूल प्रमाण की प्रकृति, ये भी अंतर्मूल प्रमाण है प्रथम स्थिति, उदय रूप प्रकृति अंतर्मूल प्रमाण प्रथम स्थिति हो, और जो अनुदय रूप जो दो है उसके गैप बड़ा हो जाता है, उसके आवली प्रमाण होती है, और वो आवली भी नष्ट होने वाली है, ये अंतर्मूल तक अभी जिनका काल उसका बाकी है अनिवृत्तिकरण का, तब तक उसके वो उदय भी चलेगा। अब यहाँ पढ़ते हैं 210 की टीका, पेज नंबर 154। देखो नीचे के और ऊपर के निषेकों को छोड़कर, नीचे के निषेक जो आपके चार्ट में जिसको हम पहली स्थिति कही है उसको नीचे के निषेक कहेंगे, ऊपर के यानी द्वितीय स्थिति उसको छोड़कर बीच वाले, बीच के कुछ निषेकों के द्रव्य को अन्य निषेकों में निक्षेपण करके, निक्षेपण करना उसमें डालना उसमें देना इस तरह से, उन निषेकों का अभाव करना उसे अंतरकरण कहते हैं, अंतरकरण अंतर करने का कार्य जिसका उदय पाया जाता है, ऐसे सम्यक होने के जिसको हम सम्यक प्रकृति कहते हैं, अंतर्मूल प्रमाण प्रथम स्थिति, ये दिखा है चार्ट में, अंतर्मूल प्रमाण प्रथम स्थिति छोड़ी, और उदय रहित ऐसे क्या क्या है यहाँ पर, मिश्र होने जिसको हम सम्यक मिथ्यात्व कहते हैं, और मिथ्यात्व प्रकृतियों की आवली मात्र प्रथम स्थिति, उस प्रमाण नीचे के निषेकों को छोड़कर, नीचे के निषेकों को कह रहे हैं प्रथम स्थिति, बीच में हुआ अंतर और ऊपर के निषेक नहीं हुए द्वितीय स्थिति, उसके ऊपर के अंतर्मूल काल प्रमाण निषेकों का अंतर अर्थात अभाव करता है, वहां सम्यक्त मुनि के अनिवृत्तिकरण काल के संख्यात्वे भाग मात्र गुणश्रेणी शीर्ष है। हमने देखा था जब गुणश्रेणी बनाई थी अपूर्वकरण के शुरू में, तो अपूर्वकरण का कारण प्लस अनिवृत्तिकरण का कारण प्लस और थोड़ा, जो और थोड़ा था उसको कहेंगे गुणश्रेणी शीर्ष यानी टॉप। गुणश्रेणी के टॉप के नीचे उसको यहाँ गुणश्रेणी शीर्ष कहा। ये गुणश्रेणी शीर्ष अंतर में चली जाने वाली है, क्योंकि ये प्रथम स्थिति कितनी बनेगी, जितना अनिवृत्तिकरण का काल शेष है। और जब गुणश्रेणी ऑलरेडी बनी थी तो यहाँ तक बनी थी बराबर, तो वो सब उसमें अंतर में चली जाएगी। उसके परमाणु नीचे वगैरह आ, तो उसके भी ऊपर के बहुत सारे परमाणु नीचे आ जाएंगे, उसमें गैप तैयार होगा। तो इसको कहते हैं गुणश्रेणी शीर्ष, और उससे संख्या गुणा ऊपरवर्ती उपरीतन स्थिति के नीचे, यानी यहाँ जो गुणश्रेणी ऐसी यहाँ तक बनी थी, तो ये गुणश्रेणी शीर्ष यानी गुणश्रेणी का टॉप कुछ नीचे, जिसको हमने अनुमुक्तिकरण से साधिक कुछ लिया था। पहले गुणश्रेणी बनी थी तो अनुमुक्तिकरण से कुछ अधिक बनी थी, वो सब अभी अंतर में चले जाएगी, और उससे भी संख्या गुणे ऊपर के नीचे वो भी अंतर में चले जाएगी, उसका अंतर हो जाएगा, गैप हो जाएगा। पूरी बन चुकी थी, उसमें से गल रही थी, गलते गलते जितनी शेष उतनी बढ़ रही थी, ये गलित अवशेष हो गई। ऊपर से उसमें गुणश्रेणी में द्रव्य दिया जाता है, पर गुणश्रेणी के निशे नंबर ऑफ निशे बढ़ नहीं रहे, गलितावशेष उसी को कहते हैं। गुणश्रेणी छोटी 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 हो रही है, छोटी छोटी होते होते यहाँ तक जितनी बची थी ये नीचे की और प्लस थोड़ी बची, ये जो बची थी ऊपर वो चली जाएगी अंदर में, उसका अंदर किया जाए। जो अनिवृत्तिकरण काल के जो साधिक जो बनाते समय अधिक निषेक उसमें बनाए थे गुणश्रेणी रूप से, वो अभी अंतर में चले जाएंगे, उसका अंतर किया जाएगा, यानी उसके परमाणु नीचे आ जाएंगे प्रथम स्थिति में। बीच में हमको गैप करना है ना, वहाँ कोई निषेक नहीं रहे, ऐसी स्थिति होनी है। यहाँ सातों कर्मों में कोई गैप नहीं होता, उनकी गुणश्रेणी जैसी चलनी वैसी चलनी, इनका अंतर करता है। ये अंतर मात्र यहाँ दर्शन होने के तीन में हो रहा है, अन्य किसी कर्मों में अंतर नहीं हो रहा है। ज्ञानार्थ दर्शनार्थ आदि में जो गुणश्रेणी बनी थी वो वैसी रही। ये चारित्र मोहनी में अभी जो संज्वलन का कोई उदय कषाय वगैरह उसमें भी गुणश्रेणी बनी थी वो वैसी बनी, उसमें कोई अंतर नहीं होगा। यहाँ अंतर केवल दर्शन मोहनी में तीन में हो रहा है। क्या मेरी बात है? तथा मिथ्यात्व मिश्र मुनि के गलने के पश्चात अवशेष रहा जो सर्व गुणश्रेणी आया। देखो ये गुणश्रेणी तो सब में बनी थी, इसमें यहाँ तक बनी थी, इसमें भी वहाँ तक बनी थी, उसमें भी बनी थी, तीनों में बनी थी गुणश्रेणी तो तीनों में हुई थी, पर उसका तो आवली छोड़कर पूरा गुणश्रेणी का आया अभी अंदर में चला गया, यानी वो सारे जो गुणश्रेणी थे वो सारे परमाणु निश्रूप हो जाए, सम्यक मोनी के प्रथम स्थिति में आंखें मिल जाएंगी और इसका उदय एक एक निशे उदय होकर निकल जाएगा। क्योंकि उनकी गैप बननी है ना, वहाँ उनकी जो गुणश्रेणी रूप रचना यहाँ पर भी इतनी हुई थी, इसकी भी यहाँ तक हुई थी, सबकी समान थी, वो अभी नष्ट होकर इसमें आ मिलेगी, सभी परमाणु सम्यक प्रकृति रूप हो जाएंगे सारे ही परमाणु। देखो यही कहते हैं हम, मिश्र मिथ्यात्व मिश्र मोनिय का गलने के पश्चात अवशेष रहा जो सर्व गुणश्रेणी आयाम, उससे संख्या गुणा उपरीतन स्थिति के निषेक इनका अंतर करता है। जितने निषेकों का अंतर किया उसके प्रमाण का नाम अंतर आयाम, यानी अंतर की लंबाई। अंतर समय प्रकृति में छोटा हुआ, मिथ्यात्व समय मिथ्यात्व में बड़ा हुआ। अभी हमने देखा ना द्वितीय स्थिति का जो पहला निषेक है वो सबका एक पोजीशन पर है, ये द्वितीय स्थिति पहला निषेक एक पोजीशन पर, और पहली स्थिति इसकी अंतर्मुख प्रमाण है और बाकी उसकी आवली प्रमाण है। अब उसका क्या करता है, उसकी बात में बाद में शांत हो गए। अब ये रुके 24